Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
जीवन का उद्देश्य अनात्मा है तब जब हमारे अंदर वासना, ये मजबूरी है, ये संसार जो है ना, ये जीवात्मा की मजबूरी है। वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो आत्म तत्व है, वो मोक्ष है, वो निर्वाण है, वो शांति है। लेकिन एक बार आदमी को मालूम पड़ जाए, ये यंत्र आदमी को एक बार मालूम पड़ जाए जीवन का उद्देश्य शांति है, सुख नहीं। एक सामान्य आदमी, अविवेकी आदमी जीवन का उद्देश्य सुख मानता है, सुख मानता है, और फिर भौतिक पदार्थों का कलेक्शन करता है, क्योंकि सुख और भौतिक पदार्थों का संबंध है। आपको सुख पाना है तो भौतिक पदार्थों का संग्रह बहुत जरूरी है। आपको आनंद लेना है, रसगुल्ले खाने का, अंदर पैदा हुई वासना खाना है, अब आपको रसगुल्ले खरीदने होंगे, रसगुल्ले खरीदने के लिए पैसे का संग्रह करना होगा, पैसे के लिए आपको दुकानदारी करनी पड़ेगी, दुकानदारी के लिए बहुत सारी बेईमानियां करनी पड़ेगी। एक चीज वो स्वाद, और उस स्वाद को मिटाने के लिए आपकी कितनी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, कितनी लंबी चौड़ी श्रृंखला है। एक रसगुल्ला खाने की इच्छा और उसके लिए आपको कितनी लंबी चौड़ी चीजें करनी पड़ती, कभी आप सोच ही नहीं सकते कि कोई आदमी बेईमानी कर रहा है और वो किस लिए कर रहा है। अरे उसको रसगुल्ला खाना है, उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, उसको बहुत अच्छे मकान में रहना है, क्योंकि उसकी वो वासना है। एक बार मालूम पड़ जाए कि जीवन का उद्देश्य वासना को पैदा कर वासना को मिटाना नहीं है, अपितु वासना को समूल उच्छेद करना है। ये वासना क्षय ही परम शांति है, यही तो मोक्ष है। अज्ञान सहकृत, अज्ञान के साथ वासना का मिट जाना ही मोक्ष है। और एक बार मालूम पड़ जाए व्यक्ति को, व्यक्ति फिर उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए कई बार आपने जाना होगा, सुना होगा, केवल जानना ही पर्याप्त है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ज्ञान जीवन में क्रांति है, ज्ञान के बाद क्रांति नहीं है, ज्ञान ही क्रांति है। आपने एक बार जान लिया बस, लेकिन वो वास्तविक जानना होना चाहिए। एक मराठी की वो भी है, उसका भावार्थ याद है मेरे को। आपको एक बार मालूम पड़ जाए कि इस भोजन में विष मिला हुआ है और कुछ करना नहीं है, आप भोजन करने जा रहे थे और आपको मालूम पड़ा कि इस भोजन में जहर है, आप क्या करोगे फिर? क्या उस भोजन को खाएंगे? आपको कोई बोले कि भैया आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, आप खाओगे? क्रांति हो गई, जान लिया और आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। आपको मालूम पड़ा कि ये चीज बहुत कीमती है, जान लिया, अब आप बहुत कोशिश करेंगे उसको पाने के लिए, बहुत कोशिश करेंगे, वो क्रांति ने जन्म लिया। इसलिए ज्ञान कोई सामान्य चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों ने ज्ञान ज्ञान, और ये ज्ञान का मतलब यहां कोई आत्मज्ञान नहीं है। आपने जाना इस भोजन में जहर है, ये कोई आत्मज्ञान नहीं है, एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन उस सामान्य ज्ञान ने आपके जीवन में एक क्रांति को जन्म दिया। आप रास्ते से गुजर रहे थे और आपको प्रामाणिक रूप से मालूम पड़ा कि रास्ता अच्छा नहीं है, क्रांति ने जन्म लिया। अब आप उस रास्ते से नहीं जा सकते। आपको कितना भी कोई बोले कि भैया इस रास्ते से जाओ, बोलेंगे भैया नहीं, इसमें बहुत खतरे हैं, हमें मालूम है। सत्य और असत्य का बोध हो जाए, धर्म और अधर्म का बोध हो जाए, नीति और अनीति का बोध हो जाए, आत्मा और अनात्मा का बोध हमें ले जाता है आत्मा की स्वीकृति में, अनात्मा की अस्वीकृति में। लेकिन बोध ही नहीं होता है, बड़ी मजेदार बात, बोध ही नहीं होता है। ऐसा कौन आदमी होगा जिसको मालूम ना हो कि क्रोध करना बुरा है? आप यहां किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए कि क्रोध करना अच्छा है कि बुरा है, वो सामने वाला बोलेगा बहुत बुरा है, लेकिन वो क्रोध करता है। तो इसका मतलब क्या है, उसको मालूम है? मालूम हुआ बुद्ध को ये संसार दुखरूप है, और मालूम है हमको भी संसार दुखरूप है। दुखालयम अशाश्वतम, हम पढ़ते हैं और पढ़कर के हमको ज्ञान हुआ दुखालयम अशाश्वतम, और उसके बाद भी हम कहां प्रवेश करते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये हमारा मालूम होना, ये मालूम होना नहीं है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सामान्य ज्ञान कर सकते, एक इंफॉर्मेशन सूचना है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान का हिस्सा है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं। आपको मालूम हुआ कि आपके शरीर में टाइफाइड के कीटाणु आ गए हैं, मालूम हो गया? अब आप दवा करोगे? पक्का। आपको मालूम हो गया मलेरिया हो गया हमको, अब मालूम होने के बाद आप उसका उपाय करोगे? आप चीजें खाने से बचोगे? डॉक्टर ने बोला ये चीजें नहीं खाना है, आप बचोगे उससे? ये ज्ञान है, ज्ञान जीवन बनता है, ज्ञान आचरण बनता है। और यदि ज्ञान हमारा आचरण नहीं बन रहा है तो केवल इन्फॉर्मेशन है, सूचना, अभी ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान एक क्रांति है। परम पूज्य महाराजेश्वर ने कहा मैं नहीं जानता हूं, ये ज्ञान है। और आपको मालूम पड़ा कि मैं नहीं जानता हूं, बहुत से लोग जानते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो नहीं जानना, जो नहीं जानने का ज्ञान होना, ये कितने लोगों को पीड़ा देता है। बहुत से लोगों को पूछो कि आप जानते हैं आत्मा को, बोलो नहीं जानते। लेकिन नहीं जानना कोई पीड़ा है? कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन जैसे आप अपने पोते को नहीं देखा हो, बहुत दिनों से नहीं देखा हो, बहुत दिनों से नहीं देखा हो, वो भी तो नहीं जानना है। नहीं देखना मैंने नहीं जानना ही तो, लेकिन आपके अंदर वेदना होती है, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, और आप उसको देखने की कोशिश करते हैं, वो भी एक ज्ञान है। लेकिन दोनों ज्ञानों में अंतर है। इसलिए अज्ञान का ज्ञान सही हो जाए तो वो ब्रह्मज्ञान तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मज्ञान की सीढ़ी है। अपने को मालूम पड़ जाए कि हम परमात्मा को नहीं जानते, आज तक नहीं जानते, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव नहीं जाना, 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा की साधना नारद जी ने की, 5 वर्ष की उम्र में साधना प्रह्लाद जी ने की, और अभी तक हम नहीं जान पाए। यदि सही अर्थों में ज्ञान पैदा हो जाए उसके बाद जीवन में एक क्रांति है, वहां पुरुषार्थ है, वहां होने का प्रारंभ है, हम वहां होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम शुरू हो गए। वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ ही वहीं से है। इसको विवेक बोलते हैं। इसलिए हम बहुत गहरी बात बोली, पराचह कामान अनुयंती बाला, बाला माने अविवेकी न, जिसको विवेक नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, जो सुखानुपेक्षी है, माने उसको सुख चाहिए, इंद्रिय जन्य सुख चाहिए। कामान अनुयंती पराचह, जो बहिर्मुख है, वो बहुत सारे पदार्थों का कलेक्शन करता जाता है, क्योंकि कलेक्शन ये राहत है, शांति नहीं है, ये सुविधा है, हमारे इंद्रियों का संरक्षण है, वासना का बचाव है, वासना बची रहती है। हमने भोजन किया, थोड़ी भूख शांत हुई, और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर भूख पैदा हो गई, फिर आपने शांत की, ये बचाव है। इसलिए हमारी वासना मिटती नहीं है, वासना केवल दब जाती है, विषयों से वासना दब जाती है, और केवल दबती नहीं, वो और गहरी होती जाती है। इसलिए शब्द का प्रयोग किया, अनुयान्ति बाला ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम, और इन पदार्थों को एकत्रित करते हुए मृत्युर्यान्ति, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहां मृत्यु का अर्थ केवल मरना मत समझ लीजिए, यहां मृत्यु का अर्थ मरना भी है, और मृत्यु का अर्थ आत्मा से दूर होने का भी है। हम बहुत सारे पदार्थों का कलेक्शन करते जाते हैं, पुत्र पौत्रादि, धन संपदा, मान सम्मान, बहुत सारी चीजों को हम एकत्रित करते जाते हैं, और ये वास्तविक ये सारी चीजें हमें आत्म भुलावे में ले जाते हैं। आदमी उसी को बहुत कुछ समझने लगता है, आदमी उसी को जीवन का परम सत्य समझने लगता है, आदमी सोचता है हमने जो पाया वो हमको मिला, वो संतोष का अनुभव करता है। लेकिन ये एक प्रकार से अपने आप को भुलावे में ले जाने जैसा है। हम अपने आप को भुलावे में ले जाते हैं, और ये अपने आप का जो भुलावा, ये सबसे बड़ी मृत्यु है। आत्मा हा शब्द का प्रयोग किया है, जो अपने आप को नहीं जानता है, अपने आप को अज्ञान में बनाए रखता है, वो आदमी आत्मा हा है, माने अपने आप को अज्ञान में रखने वाला है, वो आत्मा हां है। बहुत सुंदर बात आपने सुनी बृहदारण्यक उपनिषद में, छांडोग्य उपनिषद में, अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, ये नाश है, मृत्यु है, हमारे शांति की मृत्यु है, अमृतत्व की मृत्यु में ये बाहर के पदार्थों का बहुत ज्यादा कलेक्शन। और एक आपको बात बता दूं, यहां आगे कहते हैं, अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, जो धीर पुरुष हैं, जो विवेकी हैं, उनको मालूम है सत्य क्या है, उन्हें वासना को मिटाना है, वासना के बोझ को हल्का नहीं करना है। एक सामान्य व्यक्ति और एक विवेकी व्यक्ति में यही अंतर है। विवेकी व्यक्ति अपने वासना का क्षय चाहता है, वो चाहता है कि मेरे मन में वासना पैदा ही न हो, और एक सामान्य व्यक्ति चाहता है वासना पैदा हो, क्योंकि विषयों की सार्थकता वासना के पैदा होने में है। यदि वासना ही पैदा न हो तो विषय की कोई सार्थकता नहीं, और विषयों का परिग्रह है, परिग्रह के मूल में परिश्रम है, परिश्रम के मूल में बहुत सारी शक्ति का व्यय है, माने हमने बहुत सी चीजें पैदा की और उसके मूल में हमने बहुत सारा श्रम लगा दिया, और उन संपूर्ण श्रमजन्य पदार्थों का परिग्रह सार्थक तब है जब हमारे अंदर वासना हो। इसलिए कई बार आदमी वासना को पैदा करने का भी श्रम करता है, वासना को भड़काने का भी प्रयत्न करता है आदमी। कई बार आदमी सोचता है हमारे अंदर वासना क्यों नहीं पैदा हो रही है, आदमी सोचता है कि नहीं भूख क्यों नहीं लग रही है। हम ये कोशिश करते हैं भूख क्यों नहीं लग रही। गांव का आदमी जिसके घर में खाने को नहीं, उस आदमी की समस्या ये नहीं है भूख क्यों नहीं लग रही, ये समस्या नहीं भूख क्यों लग रही है, ये समस्या है वहां, क्योंकि वहां पर भोजन नहीं है। और इसलिए वो व्यक्ति सोचता है मेरे को भूख क्यों लग रही है, वो सोचता है कि देर से लग जाए। और जहां पर बहुत सारा कलेक्शन है, परिग्रह है, वो व्यक्ति सोचता है कि भूख क्यों नहीं लग रही है, ये समस्या है। और भूख क्यों नहीं लग रही है, आप कोशिश करेंगे, भूख लगाने की कोशिश करेंगे, हजमोला खाएंगे, फिर आप कोशिश करेंगे, योगा करेंगे, दौड़ लगाएंगे, क्योंकि भूख को पैदा करना है। भूख को इसलिए पैदा करना है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास खाने के लिए, आप सोचते हैं इतना परिश्रम करके हमने ये चीजें पैदा की और हम न खाए तो हमारा पैदा करना व्यर्थ। एक सामान्य दृष्टिकोण है ये, वस्तुओं को पैदा करो और उसका भोग करने के लिए फिर वासना को बढ़ाओ, वासना के द्वारा पदार्थों का परिग्रह करो। लेकिन जो विवेकी पुरुष होता है वो इस वासना के बोझ को ढोना नहीं चाहता, वासना को पैदा नहीं करना चाहता, वो वासना को समूल मिटाना चाहता। इसलिए अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा, अच्छी प्रकार से अमृतत्व को जानकर, माने सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, ये दोनों को जानकर विदित्वा, और उसके बाद वो धीरे धीरे वासना से ऊपर उठ जाता है, वहां वासना का क्षय हो जाता है। और जो वासना का क्षय परम शांति है, मोक्ष है, और इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं दूर देश में जाने की जरूरत नहीं, आपको दूसरे काल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे रूप में होने की जरूरत नहीं है, ये शांति का अनुभव यहीं पर, यहीं जहां आप हैं। महाराज श्री कहते हैं इसके लिए आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, आपको इसलिए छोटा होने की जरूरत नहीं, बड़ा होने की जरूरत नहीं, इसलिए बहुत बड़ा धनी होने की जरूरत नहीं, न गरीब होने की जरूरत, न स्त्री न पुरुष, आप जहां हैं आप वहीं शांति का अनुभव करेंगे, आप जिस काल में हैं आप उसी काल में शांति का अनुभव करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि मरने के बाद शांति मिलेगी, ये भी नहीं, ये वासना क्षयात्मक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा इहैव तैर्जितः सर्गो एषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ये जीवन मुक्ति है, आपने जान लिया अमृतत्व रूप आत्म तत्व को जान लिया, और जैसे आपने जाना वासना का क्षय है, अज्ञान से वासना का पोषण है और ज्ञान से वासना का क्षय है, ये जीवन मुक्ति का प्रतिपादन करता है श्लोक भगवद गीता का। इहैव माने अस्मिन्नेव शरीरे, इसी शरीर में। और दूसरी बात, जब आप जान लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, आपको आत्मज्ञान हो गया है, ब्रह्मज्ञान हो गया, इसका अर्थ यह भी नहीं कि संसार मिट गया है। संसार का अत्यंता भाव हो जाता है, विषयों का अत्यंता भाव हो जाता है, आपने जिसका परिग्रह किया है वो सारी चीजें समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। महाराज श्री बहुत अच्छी बात कही, आपको ज्ञान हो गया तो क्या होता है, ये सारा संसार, ये सारी चीजें, ये परिस्थितियां, ये परिग्रह सब समाप्त हो जाता है। विरोध वस्तु का नहीं है, विरोध संसार का नहीं है, अशांति का कारण संसार नहीं है। संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है, हमारे मन में संसार के प्रति महत्व बुद्धि है और इसीलिए उसके प्रति परिग्रह की मनोवृत्ति है, एक साथ साथ चलती बहुत सारी चीजें, हमारे अंदर सत्यत्व बुद्धि है, आत्मा के बारे में सत्यत्व बुद्धि नहीं, संसार के बारे में सत्यत्व बुद्धि है, और ये सत्यत्व बुद्धि संसार में ही कि हमारी बुद्धि में है। संसार सत्य है ये बात हमारे मन में है कि संसार में है, ये संसार सत्य हो असत्य हो इससे मतलब नहीं, उस संसार के प्रति हमारे मन में ये बुद्धि है ये सत्य है, और सत्य बुद्धि हमें महत्व बुद्धि में ले जाती है, महत्व बुद्धि हमें संकलन में ले जाती है, संकलन की बुद्धि हमें परिश्रम में ले जाती है, एक क्रम है। और एक बार मालूम पड़ा ये सारा संसार सत्य नहीं है, माने सत्यत्व आत्मा में परिलक्षित हो गया, ये सत्यत्व बुद्धि अनात्मा से निकलकर आत्मा में चली गई, अब आपको संसार सत्य मालूम नहीं पड़ता है। राजा जनक को क्या हुआ, राजा जनक ने स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद जागृति स्वप्न हो गई, हुआ क्या, कुछ मिटा, केवल समझ मिटी, केवल दृष्टि पैदा हो गई वहां। इसलिए अध्यात्म ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान ये दृष्टि का परिवर्तन है, ये सृष्टि का परिवर्तन नहीं, आपके दृष्टि में आ गई बात कि आत्मा है और वो आत्मा मैं हूं और वो आत्मा ब्रह्म है, उसमें कोई अंतर नहीं है, आपको केवल मालूम पड़ा, एक दृष्टि का परिवर्तन है, मालूम होना है, अब बाहर संसार में कुछ बदला नहीं। राजा जनक ने जाना, स्वप्न देखा उन्होंने, और वो स्वप्न नारायण ऐसा स्वप्न था कि उसकी उनकी जागृति भी स्वप्न होने लगी। एक बहुत ऊंचे महात्मा थे विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज, वो अक्सर वो कहते थे कि मैं स्वप्न का विशेषज्ञ हूं। एक दिन मैंने पूछा, महाराज जी आप स्वप्न के विशेषज्ञ ऐसा क्यों बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत को समझने के लिए हमारे पास व्यावहारिक उदाहरण इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, बात सत्य थी। इसलिए आप अद्वैत सिद्धि से लेकर छोटे से छोटे बड़े से बड़े वेदांत के ग्रंथों को आप देखेंगे तो वहां पर अद्वैत वेदांत के मिथ्यात्व को समझाने के लिए आपका स्वप्न का दृष्टांत आता है, स्वप्नवत, ये संसार मिथ्या है सत्य नहीं है, आप कैसे समझेंगे, आपके जीवन का कोई अनुभव, भाई उदाहरण आपको ऐसा दिया जाता है कि जो आपकी अनुभूति का विषय हो, जिसको आप जानते ही नहीं है वो उदाहरण नहीं बन सकता है, आपके अनुभव की चीज होना वो उदाहरण बनती है, इसलिए स्वप्नवत। स्वप्न में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं लेकिन होती नहीं है, सत्य मालूम पड़ती हैं लेकिन सत्य होती नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी मालूम पड़ती हैं लेकिन लंबी चौड़ी होती नहीं है, बहुत बड़े देश में मालूम पड़ती है लेकिन वो देश भी होता नहीं है, वो आश्चर्य की बात है, उसका देश नहीं होता, देश मालूम पड़ता है, देश नहीं होने के बाद भी देश का मालूम होना, बहुत लंबी चौड़ी वस्तु नहीं होती फिर भी मालूम पड़ती है, वस्तु के नहीं होने के बाद वस्तु का मालूम पड़ना, यही तो उसका मिथ्यात्म है। और इसी दृष्टांत के द्वारा ये संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व को वेदांत आपके सामने रखता है, जैसे स्वप्न नहीं है वैसे जागृति भी नहीं है, लेकिन स्वप्न में आपको स्वप्न स्वप्न मालूम नहीं पड़ता है, उसको स्वप्न जानने के लिए जागृति में आना पड़ता है, बस इतनी बात है। ऐसे ही जागृति को हमें स्वप्न समझने के लिए हमें महाजागृति में जाना पड़ता है, और वो महाजागृति आत्मज्ञान की जागृति है, आत्मज्ञान हो गया। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये जागृति स्वप्न है, आप जग गए, वास्तविक आत्मज्ञान की जागृति में आप जग गए, अब आपके लिए स्वप्न है। राजा जनक जग गए, क्या हुआ, केवल जग गए, बाहर का कुछ मिटा, कुछ नहीं मिटा, जैसा महल था जैसे वो बैठते थे वैसा ही था, लेकिन अंतर पड़ा दृष्टि का। इसलिए श्रुति कहते हैं अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम विदित्वा अध्रुवेशु न प्रार्थयन्ते। आप एक बार सत्य का बोध हो गया तो आप फिर असत्य को चाहने नहीं लगेंगे, आप दुनिया के पदार्थों को पाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना में वासना है, ये भौतिक पदार्थों के संग्रह की कामना ये वासना है, और उसके बाद फिर आपके अंदर नहीं रहती वासना, वासना सारी मिट जाती है, निर्वसन जो परम शांति की अवस्था वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और उस अवस्था को वो साधक प्राप्त हो जाता है। वाणी को विराम।